Priya Sangavai, ho beno, namo buddhai, jai bhim. So our journey to knowing the Buddha, to the Buddha's feet, is proceeding really well.
तो हमारी जो यात्रा है बुद्ध के चरणों में उन्हें जानने के लिए काफी अच्छी आगे बढ़ रही है।
We're going to the feet of the Buddha more and more deeply, more and more fully.
हम बुद्ध के चरणों में पूरी तरह और गहराई से जा रहे हैं।
Tonight we'll follow the same procedure as last night.
कल शाम को जो हमने किया आज भी हम वही करेंगे।
Maybe a little more orderly if we can.
और अधिक सुव्यवस्थितता से अगर हो सकता है तो।
So when we go through into the parikrama, one each side of the, you know, there are two entrances, one to each entrance.
तो आपने देखा जब परिक्रमा के लिए हम जाते हैं पेड़ की ओर जहां हम बैठे होते वहां दो छोटे-छोटे द्वार हैं।
If there are people there, just walk by them.
अगर लोग हैं तो उनके बाजू से होकर वहां से गुजर जाइए।
And then we'll try and form two lines.
और हम दो पंक्तियां लाइन बनाने की कोशिश करेंगे।
And if possible, keep an even spacing.
और अगर मुमकिन हुआ तो समान अंतर दो व्यक्तियों के बीच रखने की कोशिश कीजिए।
If we all bunch up, it's more difficult for everybody else.
तो अगर हम सब लोग भीड़ करेंगे तो फिर सबके लिए मुश्किल होती है।
Because they can't walk past us and so on.
क्योंकि कोई भी वहां से फिर जा नहीं सकेगा।
So and again, we'll go and salute the Ajapala Nigrodha.
आज भी हम अजपाल निग्रोध को नमन करेंगे, प्रणाम करेंगे।
We'll just walk up and we'll walk round it, saluting it with our right shoulders.
तो हम केवल वहां से चलेंगे और हमारा जो दाहिना खंधा है उससे एक मान वंदना जिसे कहते हैं वो हम देंगे।
If you want to touch your head to the pillar, maybe do it later or before.
तो अगर आप अपना सर वहां झुकाना चाहते हैं तो पहले कीजिए या बाद में कीजिए, चलते वक्त मत कीजिए।
Anyway, it'll be all right. It was okay.
ये अच्छा होगा, ये ठीक है।
A bit of cheerful chaos. So yes, that's quite an important evening gathering down there, isn't it?
तो ऐसा लगता है कि वो जो शाम होती है काफी महत्वपूर्ण शाम होती है हमारे लिए।
We're doing so much preparation.
क्योंकि हम बहुत सारी तैयारियां यहां करते हैं।
We're really purifying ourselves.
वाकई में हम अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं।
We're making ourselves ready to go to the feet of the Buddha.
हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं बुद्ध के चरणों में जाने के लिए।
We're integrating ourselves, developing positive emotion.
हम अपने आप को एकाग्र कर रहे हैं, हमारे विधायक भावों का हम वृद्धि कर रहे हैं।
We're dying dhammically to some extent.
कुछ हद तक धार्मिक मृत्यु को हम अपना रहे हैं।
We're sitting in dhammic receptivity.
और हम जब बैठते हैं तब धार्मिक ग्रहणशीलता में बैठते हैं।
Then we can go to the feet of the Buddha.
फिर हम बुद्ध के चरणों में जाते हैं।
We're ready to do it.
हम इसे करने के लिए तैयार हैं।
So when we've been looking at going to the feet of the Buddha, we've been following a sort of journey.
तो जब हम बुद्ध की ओर जा रहे हैं तो एक प्रवास या एक यात्रा हम कर रहे हैं।
First of all, we recognize that the Buddha is absent.
सबसे पहले हमने इस बात को पहचाना कि बुद्ध की गैर मौजूदगी या अनुपस्थिति।
He's literally absent, he's not here.
वो वास्तविक रूप से वहां अनुपस्थित है, वो वहां नहीं है।
But he's not in us.
लेकिन वे हम में नहीं है।
We are not the Buddha.
हम बुद्ध नहीं है।
And in many cases, most of the time, the Buddha isn't in our minds at all.
और बहुत बार बुद्ध हमारे मन में नहीं है।
But then we looked at how the Buddha disappeared.
फिर हमने देखा कि बुद्ध कैसे अदृश्य होते हैं।
And again, I remind you, it was by seeing the house builder.
और मैं आपको याद दिला दूं कि गृहकार को देखकर उसे पहचानकर।
Seeing this Trishna that is driving us to build a house of identity again and again and again.
इस बात को देखना कि जो तृष्णा है वो बार बार हमें चलित करती है गृह को बार बार या पुनः पुनः बनाने में।
The Buddha saw the house builder.
बुद्ध ने गृहकार को देखा।
He destroyed the house.
उन्होंने गृह को ध्वस्त किया।
So he disappeared.
इसलिए वे अदृश्य हुए.
He disappeared as a conditioned being.
एक संस्कारित व्यक्ति या सजीव के परिपेक्ष में या उस संदर्भ में वे अदृश्य हुए.
We've been looking that in the six element practice.
वो हम छह धातुओं के ध्यान में या साधना में देखते हैं.
The house builder builds the house of self.
जो गृहकार है वह स्व का गृह बनाता है.
He builds the house of self by identifying with the धातुस.
वो गृह बनाता है धातुओं को पहचान कर.
He identifies with earth, water, fire, air and space.
वो जो पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश है, इन धातुओं को पहचान कर गृह बनाता है.
And when the Buddha sees the house builder, that identification stops.
जब वे गृहकार को देखते हैं, वह पहचान रुक जाती है.
So the conditioned mind disappears.
तो संस्कारित जो चित्त है, वह अदृश्य या नष्ट हो जाता है.
But you could say that the unconditioned mind is left.
लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि असंस्कारित चित्त जो है, वह रहता है.
The mind that is neither born nor dies.
ऐसा चित्त ना जन्म लेता है ना मृत्यु होता है.
Because it's only conditioned things that are born and die.
क्योंकि केवल संस्कारित चीजों का जन्म होता है और उनकी मृत्यु होती है.
So that gave us a little bit of an idea of the Buddha.
तो यह हमें हल्की सी यानी झलक देता है बुद्ध की.
As we saw him disappear, we've got a sense of what he is not.
जैसे ही वे अदृश्य होते हैं, तो हमें ऐसा भाव मिलता है कि वे यानी बुद्ध क्या नहीं है.
That gives us an idea of what he is.
और वही हमें कल्पना भी या संकल्पना देता है कि वे क्या है.
Just as the shadow gives you an idea of the sun.
जैसे परछाई जो है वह सूर्य होने का द्योतक है.
So then yesterday we looked at the Buddha's meeting with humanity.
कल हमने देखा बुद्ध की मानवता से भेंट.
Before that, we saw the day before that, didn't we, that the Buddha, in losing the house builder, substitutes for that the Dhamma.
उसके पहले हमने यह देखा कि जब बुद्ध ने गृह को नष्ट किया तो उन्होंने धम्म को उससे बदल दिया.
Whereas we are driven by self, he is carried by Dhamma.
जब हम लोग स्व से प्रभावित है, बुद्ध धम्म से प्रभावित होते हैं.
He's on the stream of the Dhamma, the Dhamma Sota.
वे धम्म सोता है, वो धम्म के प्रभाव में होते हैं.
That's what moves him.
यही बात उन्हें चलाती है.
Then we saw his meeting with humanity.
फिर हमने उनका मानवता के साथ मिलाप देखा.
We saw that first of all he recognized that he was the highest form of humanity.
हमने यह देखा कि वे मानवता के उच्च आदर्श है.
There was nobody superior to him in dhammic attainment.
धम्म के उपलब्धियों में या धार्मिक उपलब्धियों में बुद्ध से परे या उनके उच्च कोई नहीं है.
Then we saw that he rejected completely all social hierarchy, all oppressive systems.
और फिर हमने यह देखा कि उन्होंने सभी प्रकार की सामाजिक असमानता को और उत्पीड़न को नकारा.
He was only able to recognize a hierarchy based on true dhammic worth.
जो भी यानी चढ़ाव है वो केवल मूल्यों का चढ़ाव है, यह उन्होंने देखा.
Based on on shila.
शील के आधार पर.
And based on prajna.
और प्रज्ञा के आधार पर.
That was the hierarchy that he could recognize.
वही चढ़ाव उन्होंने पहचाना.
Wealth, caste, class, whatever, he couldn't recognize that.
आपकी जाति या वर्ग या आपकी आपका धन उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं था, उसे उन्होंने नहीं पहचाना.
Then we saw his reflection on the difficulty of teaching.
फिर हमने यह देखा कि उनकी पढ़ाने के लिए या संवादित करने के लिए क्या कठिनाइयां हैं.
He'd realized something so valuable, he wanted to communicate.
उन्होंने ऐसी कोई गहरी मौल्यवान चीज ढूंढी, वो संवादित करना चाहते.
We saw in effect that part of his nature is to communicate.
हमने यह देखा कि उनका अपना ही एक हिस्सा ऐसा है जो संवादित करना चाहता है.
But he thought to begin with that nobody would be able to understand.
लेकिन उन्होंने यह सोचा या महसूस किया कि कोई भी इस बात को समझ नहीं पाएगा.
And then he had that vision of a lotus pool.
और फिर उन्हें यानी जो कमल कुंज है उसकी दृष्टि थी.
And he realized that some people were a little bit open.
और फिर उन्होंने देखा कि कुछ लोग थोड़े से खुले हैं.
And that they would be able to understand.
और वे लोग समझने के लिए काबिल होंगे.
So on that basis he made his great resolution to teach the Dhamma.
और उस बुनियाद पर उन्होंने यह निर्धार किया या निश्चय किया कि मैं धम्म को सिखाऊंगा.
So the Buddha communicates to us.
तो बुद्ध जो है हमसे संवादित या हमसे संवाद करते हैं.
But he also made clear who he's talking to.
लेकिन उन्होंने इस बात से भी स्पष्टता हासिल की कि किससे वे बात करें.
He made clear what he wants from us, if you like.
ऐसा आप कह सकते हैं कि उन्होंने इस बात की स्पष्टता ली कि हमसे उन्हें क्या चाहिए.
The Buddha communicates.
क्योंकि बुद्ध संवाद करते हैं.
Our response is faith.
और उस संवाद के प्रति हमारा जो प्रतिसाद है वह श्रद्धा है.
The Buddha said that let those who have faith open their ears.
बुद्ध ऐसा कहते हैं कि जिनके पास श्रद्धा है उनके कान खुले.
It's shraddha that enables us to know the Dhamma.
यह श्रद्धा है जो हमें योग्य बनाती है धम्म को श्रवण करने के लिए सुनने के लिए.
It's shraddha that moves us on the path.
यह श्रद्धा है जो हमें मार्ग पर आगे करती है आरूढ़ करती है.
It's shraddha that brings us to the feet of the Buddha.
और यह श्रद्धा ही है जो हमें बुद्ध के चरणों में ले जाती है.
But we really have to understand very carefully what we mean by shraddha.
लेकिन हमें इस बात को स्पष्टता से समझना चाहिए कि श्रद्धा का अर्थ क्या है.
Because in the Buddha Dhamma there's a quite different meaning given to shraddha from that you find in other Indian religion.
तो बौद्ध धर्म में श्रद्धा का जो अर्थ या संदर्भ है वह बिल्कुल अलग है अन्य भारतीय धर्मों की तुलना में.
And even the religion that I was brought up in, the idea of faith has a quite different sort of meaning.
मैं भी जिस धर्म में पला बड़ा उसमें भी श्रद्धा का या उस श्रद्धा की संकल्पना का जो अर्थ है वह अलग है.
It's such really important that we're clear what this faith is that's being evoked in us.
तो यह महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी बात है जिसे हम श्रद्धा कहते हैं हमें उजागर होती है या उत्पन्न होती है.
I've seen it in your faces, huh?
मैंने आपके चेहरे पे इसे देखा है.
And no doubt you've seen it in mine.
निश्चित ही आपने मेरे चेहरे पे देखी होगी.
When we're down there, we feel so much faith.
जब हम वहाँ होते हैं तो हम श्रद्धा से भर जाते हैं.
I've seen some people crying with faith.
मैंने कुछ लोगों को श्रद्धा से रोते हुए भी देखा है.
Crying with happiness.
क्योंकि वह जो आंसू है वह खुशी के.
But so many, maybe everybody, so full of faith.
शायद हम में से हर एक व्यक्ति श्रद्धा से परिपूर्ण या भर के होता है.
That's wonderful. That's really good.
यह बहुत ही सुंदर बात है.
But let's be clear what it is that we're feeling.
लेकिन आइए इस बात से हम स्पष्ट हो जाए कि क्या हम महसूस करते हैं.
Because you know it's famous in India, isn't it, that if you paint a stone orange, people will have faith in it.
क्योंकि यह तो मशहूर ही है भारत में. आपने अगर सिंदूर या गेरुआ रंग पत्थर को लगा दिया तो लोगों की श्रद्धा जाग जाती है.
Yesterday when I made that stand for the gong, afterwards I bent down and bowed to it.
तो जैसे मैंने गांग को बजाया फिर मैंने उसी को प्रणाम किया.
But that's what people do.
तो यही लोग करते हैं.
They feel very strong faith.
क्योंकि बहुत प्रबल श्रद्धा वो महसूस करते हैं.
But in anything.
लेकिन उनकी श्रद्धा किस में भी कहीं पे भी हो जाती है.
And a very strong faith sometimes.
और कभी कभी वो श्रद्धा बहुत प्रबल हो जाती है.
They don't really know what they've got faith in.
उन्हें पता नहीं है कि किस बात में उनकी श्रद्धा है.
And I'm not saying it's all bad.
और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि यह सब गलत है.
But it's not enough.
लेकिन यह पर्याप्त नहीं है.
Faith is something more than just being able to believe in something.
श्रद्धा एक ऐसी बात है.
It's more than just being able to believe.
Ashraddha kisi cheez ke upar vishwas rakhne se pare hai, usse kahi adhik hai.
So we need to have genuine faith, but we must be careful of, well, what you call andhashraddha, blind faith.
To humme sachi shraddha honi chahiye, lekin andh shraddha nahi honi chahiye.
So I'm going to go through the traditional description of shraddha.
तो जो पारंपरिक श्रद्धा का जो विश्लेषण है मैं उसे बताना चाहता हूँ.
Because it's really important to understand this.
क्योंकि इसे समझना महत्वपूर्ण है.
Faith is so central to the Dhamma life.
क्योंकि श्रद्धा धार्मिक जीवन में केंद्रीय है.
Nagarjuna, that is Arya, Acharya Nagarjuna, said that faith is more important than wisdom.
तो आचार्य नागार्जुन ने आचार्य नागार्जुन ने ऐसे कहा कि प्रज्ञा से अधिक महत्वपूर्ण है श्रद्धा.
Faith is more important than wisdom.
Yes, he can't believe it because he's Nagarjuna, but it's true. Shraddha is more important.
तो श्रद्धा बहुत महत्वपूर्ण है.
But why?
लेकिन क्यों?
Because you can only have wisdom on the basis of faith.
क्योंकि आप कि श्रद्धा उत्पन्न हो सकती है, आप में श्रद्धा हो सकती है केवल सॉरी आप में प्रज्ञा हो सकती है केवल श्रद्धा की बुनियाद पर. सॉरी रिफ्लेक्ट.
यस, वी गॉट टू गेट दिस द राइट वे राउंड. वी नीड श्रद्धा फर्स्ट.
तो हमें श्रद्धा होनी चाहिए.
बिकॉज इफ यू हैवंट गॉट श्रद्धा व्हेन यू लिसन टू द डम्मा इट्स जस्ट योर इंटेलेक्ट लिसनिंग.
अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो जो कुछ भी आप सुनेंगे वो केवल बुद्धिवाद हो जाएगा.
दैट्स वेरी गुड फॉर PhDs. फॉर माय ट्रीट.
तो यह बहुत अच्छी बात है PhD के लिए.
यू नो आई नो प्रोफेसर्स ऑफ बुद्धोलॉजी ऑफ द स्टडी ऑफ बुद्धिज्म हु नो सो मच मोर अबाउट बुद्धिज्म देन आई डू.
तो मैं कई प्रोफेसरों को या प्राध्यापकों को जानता हूँ बुद्धोलॉजी के बारे में या बुद्ध शास्त्र के बारे में. मुझसे कई अधिक वो जानते हैं.
But they know nothing.
लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है.
They know everything, but they know nothing.
उन्हें हर चीज पता है लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता है.
No faith.
क्योंकि उनमें श्रद्धा नहीं है.
It's just a subject for them.
उनके लिए केवल वो एक विषय है.
It might be entomology, studying insects.
जैसे कि जो कीटक शास्त्र कहते हैं, कीटक का जो अभ्यास करते हैं उसके जैसा.
Instead of insects, they study Buddhism.
तो वो कीटक का अभ्यास करने के बजाय वो बौद्ध धर्म का अभ्यास करते हैं.
So the intellect alone cannot know the Dhamma.
तो बुद्धिमत्ता ही केवल मात्र धर्म को नहीं जान सकती.
We need faith in order to know the Dhamma.
हमें धम्म को जानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है.
And well, that's something that actually people in India are really good at.
और जिसमें भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं.
I can guarantee that all the Western brothers and sisters will find that they've been deeply inspired by your capacity for faith.
तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि मेरे जो पाश्चिमात्य भाई बहन यहाँ है आपके श्रद्धा को देखकर वो गहरे प्रभावित होंगे.
We don't find it so easy in the West.
क्योंकि पश्चिम जगत में हमारे लिए यह आसान नहीं है.
We're a bit more cynical.
हम थोड़े से इस बात से घबराते हैं.
You don't have a word for it, do you? Of course, in India, the problem is that it's often andhashraddha.
लेकिन भारत में समस्या यह है कि बहुत ज्यादा अंधश्रद्धा है.
In the West, it's just blind, but not faith.
पश्चिम जगत में वे लोग अंधे हैं लेकिन वहाँ श्रद्धा नहीं.
But in India there's a strong tendency to blind faith.
लेकिन भारत में एक प्रबल प्रवृत्ति है अंधश्रद्धा की.
When Maitreya Vyasa first came to England, he made a very shrewd observation.
जब मैत्रेय पहली बार पश्चिम में आए तो उन्होंने बहुत ही क्या कहते हैं कि चतुर निरीक्षण किया.
He said that what he'd noticed in the West was that people approached the Dhamma with their heads.
उन्होंने क्या बात देखी कि लोग जो है पश्चिम जगत में धम्म को दिमाग से देखते हैं.
And maybe they connected their hearts with that.
और शायद वो दिल तक उतर सकता है.
In India, people approach with their hearts.
और भारत में लोग धम्म को दिल से लेते हैं.
And maybe they connect that with their heads.
और लेकिन शायद वो फिर वो उनके दिमाग तक जा सकता है.
So the faith that we have must be a full faith, huh?
तो जो हमारे पास श्रद्धा है वह श्रद्धा पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए.
So what is this full faith?
तो यानी पूर्ण श्रद्धा या संपूर्ण श्रद्धा क्या है?
Right from the start, the Buddha made this clear.
शुरुआत से ही बुद्ध ने इस बात की स्पष्टता स्पष्टोक्ति रखी.
You'll find it in the Pali suttas.
यह पाली सूत्रों में आपको मिलेगा.
You'll find it in the Mahayana suttas.
महायान के सूत्रों में आपको मिलेगा.
There's an analysis of faith into three different aspects.
तो जो श्रद्धा का वर्गीकरण या विश्लेषण है उसके तीन मुख्य आयाम है.
The first is what's called understanding faith.
पहली बात है श्रद्धा को समझना.
The second is serene faith. Serene. Lucid faith. Clear.
Shuddh. Swasth.
Yes, swasth. Yeah. Shuddh or swasth. Yeah.
दूसरा जो उसका प्रकार होगा वो कह सकते हैं कि सुस्पष्ट श्रद्धा.
And then fourthly, there's the longing faith.
और तीसरी जो है वह
अभिलाषा
यानी अभिलाषा श्रद्धा यानी अभिलाषा आप समझ जाए.
And for faith to be capable of hearing the Dhamma, it has to have all three aspects.
और अगर श्रद्धा हम में होनी है तो यह तीनों आयाम उसमें होने चाहिए.
So we can be we're just watching ourselves a little bit to see all these three aspects in play.
तो हम अपने आप का ऐसा निरीक्षण करते हैं यह तीनों जो आयाम है उसमें होने चाहिए.
So let's look at the first understanding faith.
तो आइए पहले आयाम को देखते हैं जिसे मैं कहता हूँ श्रद्धा की समझ.
And this means that you understand the nature of the Dhamma.
इसका अर्थ यह है कि जो धम्म का स्वभाव है उसे हम समझते हैं.
Not with your brain, not with your intellect.
आपके विचार बुद्धि से या केवल बुद्धिमत्ता से ही नहीं.
You could say with your heart.
आप ऐसा कह सकते हैं अपने दिल से.
You understand it and you're convinced by it.
आप इसे समझते हैं और आप इससे पूरी तरह सहमत होते हैं.
And you're convinced not irrationally.
और आप पूरी साझेदारी के साथ सहमत होते हैं.
It's not just another kind of blind faith.
ना समझता की समझ नहीं या अंधश्रद्धा नहीं.
Yes, there's a very strong heartfelt response to the truth.
निश्चित ही है कि जो सत्य है उसके लिए दिल से हृदय से सहृदय हमारा प्रतिसाद आता है.
I remember this very strongly myself when I first encountered the Buddha Dhamma.
मुझे स्वयं ऐसा अनुभव आया जब मैं पहली बार बौद्ध धर्म से मेरा मुकाबला हुआ.
I read a book of scriptures, of Buddhist texts.
मैंने बुद्ध सूत्रों की कुछ किताब पढ़ी.
Mainly, to begin with, they were taken from the Pali sources.
प्राथमिक रूप से यह पाली सूत्रों के ऊपर आधारित था.
And I just read one or two pages and I knew this is the truth.
जैसे ही मैंने पहले दो तीन पन्ने उसके पढ़े मैं यह जानता था कि बस यही सत्य है.
I just knew. I didn't have to think about it. I just knew.
मैं केवल इसे जान गया. मुझे इसके बारे में सोचना नहीं पड़ा. इसके लिए मुझे कुछ प्रयास नहीं लगाने पड़े.
And that's never changed.
और वह कभी भी फिर बदला नहीं मेरे जीवन.
There was an immediate intuitive response to the truth of the Dhamma.
तो हमारा एक बहुत ही ऐसा सहज और दिल से प्रतिसाद होता है सत्य के प्रति.
Particularly as found in the mouth of the Buddha.
विशेषतः जब वह बुद्ध के वाणी से आता है या उनके मुंह से आता है.
So yes, there's a strong intuitive response.
तो ऐसा एक बहुत सहज या दिल से प्रतिसाद आता है.
But then you need to think about it.
लेकिन फिर हमें इसके बारे में सोचना भी है.
You need to really see that it makes sense.
हमें इस बात को देखना है कि वाकई में इसका कुछ अर्थ या भावार्थ है या नहीं है.
Is it in accordance with reason?
क्या यह कारण मीमांसा के साथ इसका मेल होता है या नहीं होता है?
You know, many people believe, and many people in India believe that there's the Ram Setu between India and Sri Lanka.
क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि श्रीलंका और भारत का यानी कन्याकुमारी के पास से जब वो श्रीलंका को जाते हैं वहां एक राम सेतु है
that's the bridge that Rama crossed in order to get back Sita.
तो सीता को हासिल करने के लिए राम ने उस पुल के ऊपर सेतु के ऊपर चल के वो गए थे.
And it's quite widely believed by intelligent people in India that there really is the foundations of the Ram Setu there.
तो बहुत बुद्धिमान या विद्वान लोग भी इस बात को मानते हैं कि वहाँ पे वाकई में राम सेतु है.
There's no evidence for it.
अब इसका कोई भी संदर्भ या तथ्य हमारे पास नहीं है.
But people believe it.
लेकिन लोग इस पर विश्वास रखते हैं.
So they believe against reason.
तो हम कारण के विरुद्ध हम इसके ऊपर विश्वास रखते हैं.
Many Christians believe that God created the world in 7 days.
बहुत सारे ईसाई लोग ऐसा मानते हैं कि ईश्वर ने 7 दिन में विश्व का या ब्रह्मांड का निर्माण किया.
No, 6 days, sorry.
छह दिन में.
Because on the 7th day he rested.
क्योंकि सातवें दिन में उन्होंने आराम किया.
That's Sunday, that's why we shut the shops on Sundays.
और वो संडे है यानी इतवार है इसलिए हम सब लोग उस दिन आराम करते हैं.
Because we don't want to wake God up.
क्योंकि तब ईश्वर को हम यानी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हूँ.
But people really believe this, that God created the world in 7 days.
लेकिन लोगों ने वाकई में इस पर विश्वास रखा कि 7 दिन में दुनिया तैयार हुई.
But that's not what science shows us.
लेकिन विज्ञान हमें यह नहीं बताता है.
You know, you just need to look at the fossils and you can see it took a lot longer than 6 days.
तो अब आप जीवाश्म को देखिए और आप पता चलेगा आपको कि 7 दिनों से कई दिन इसे तैयार होने में लगे.
So this strong intuitive response to the truth needs to be tested by reason.
तो आपका यह जो प्रबल प्रतिसाद सत्य के प्रति जो होता है उससे हमने कारणों सहित जांचना चाहिए परीक्षण करना चाहिए.
That's why Baba Saheb chose the Buddha Dhamma.
इसलिए बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म दिया.
Because it was not in contradiction to reason.
क्योंकि यह आपके कारणों के विरुद्ध नहीं है.
So yes, our strong intuitive response to the truth is backed up by reason.
तो यह जो सत्य के प्रति प्रबल प्रतिसाद जो होता है यह कारण सकारण होना चाहिए.
Reason just stops us from believing what is impossible.
कभी कभी कारण जो है यह हमें रोकने से सोचते हैं क्या असंभव है.
But the main thing is this strong conviction.
महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी गहरी कटिबद्धता होती है.
And yes, then of course that conviction needs to be backed up by experience.
और आपकी जो कटिबद्धता है उसको अनुभव की जोड़ होनी चाहिए.
So this first kind of faith is strong intuitive response to the truth.
तो पहली जो बात है यह हमारा प्रबल प्रतिसाद होता है सत्य के प्रति.
Backed up by reason and experience.
कारण के साथ सकारण यह होता है और अनुभव के साथ यह होता है.
It's traditionally said that this kind of faith is especially in the principle of karma.
पारंपरिक दृष्टि से इसे ऐसा कहते हैं कि
what karma?
The principle of karma.
यह कर्म सिद्धांत के साथ होता है.
Our strong conviction is that the truth of the Dhamma taught by the Buddha is a fact.
हम ऐसा मानते हैं कि जो भी सत्य बुद्ध ने बताया उसके यानी तथ्य यह अनुभव ही नहीं है.
That karma really does shape you.
कर्म वाकई में आपको गढ़ते हैं या आपको बनाते हैं.
That's the absolutely basic conviction of a Buddhist.
यह बिल्कुल यानी केंद्रीय मानना है बौद्धों का.
And we believe it because we've heard it from the Buddha.
हम इस पर विश्वास रखते हैं क्योंकि हमने इसे बुद्ध से सुना है.
Because it makes sense.
क्योंकि इसका भाव बनता है कुछ अर्थ बनता है.
Because it just immediately feels like the truth.
और यह तुरंत ही सत्य है ऐसा महसूस होता है.
Of course it goes much further than that.
निश्चित ही इससे कई आगे या परे यह जाता है.
But our first understanding faith is in karma.
लेकिन पहली हमारी जो समझ है श्रद्धा में वह कर्म है.
Because karma allows us to approach the Buddha.
क्योंकि कर्म हमें इस बात के लिए योग्य बनाते हैं कि हम धम्म के की ओर रुख करें.
Everything we've been doing during these days is using karma.
जो कुछ भी हम इन दिनों कर रहे हैं, हम अपने कर्मों का इस्तेमाल कर रहे हैं.
We're making a karmic effort and we get a vipaka.
क्योंकि हम कार्मिक प्रयास करते हैं और उसके विपाक हमें मिलते हैं.
Our minds have changed since the beginning of the retreat.
आप देख पा रहे होंगे कि शिविर के शुरुआत से अब तक जो हमारा मन है वह बदला है.
Because of karma.
कर्मों के कारण.
Because we've been developing skillful karma.
क्योंकि हम कुशल कर्मों की वृद्धि कर रहे हैं.
And that will take us all the way to the Buddha.
और यही हमें बुद्ध तक ले जाएंगे.
So that's the first kind of faith.
तो यह पहली प्रकार की श्रद्धा है.
And it's really important for us to include this when we think about faith.
तो यह बहुत जरूरी है इसे सम्मिलित या इसका समावेश करना जब हम श्रद्धा के बारे में सोचते हैं.
Otherwise we have a tremendous feeling for the Buddha.
नहीं तो बुद्ध के प्रति हमारी बहुत गहरी भावना होगी.
We feel so much joy and happiness and faith in the Buddha.
हमें बहुत खुशी होगी, बहुत आनंद होगा बुद्ध को महसूस करते वक्त.
And then what?
फिर क्या?
What happens next?
फिर क्या होता है?
Well, you go away and then you have to come back again.
फिर आप दूर चले जाते हो, आपको वापस आना पड़ता है.
In effect, you're making the Buddha into a moksha datta.
तो तब हम बुद्ध को मोक्ष दाता बनाते हैं.
Baba Sahib said he's not a moksha datta, a giver of liberation. He's a giver of the path, a marga datta.
बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध मोक्ष दाता नहीं है, मार्ग दाता है.
So if you're going to have faith in the Buddha, it needs to be faith in the Buddha as teaching the Dhamma.
तो अगर आप में बुद्ध, अगर आपकी बुद्ध में श्रद्धा है, तो जो धम्म वो सिखाते हैं, उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए.
It has to be faith in the truth of the Dhamma.
धम्म का जो सत्य है, उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए.
A deep conviction, this is the truth.
एकदम यानी गहरी कटिबद्धता इसको मानने में कि यही सत्य है.
So that you're convinced that this is how you will lead your life.
तो आप इस बात से सहमत होते हैं कि ऐसा ही मैं मेरे जीवन को व्यतीत करूंगा या निर्देशित करूंगा.
If you have to cross a bridge and you're not confident whether it will support your weight or not, you won't cross.
अगर कोई पुल से आप जाना चाहते और वो अगर आपका भार नहीं ले पाता तो फिर आप उससे नहीं जाते.
You need to be convinced that the bridge will hold up.
आपको यह पता होना चाहिए कि वो जो ब्रिज है यह आपको यानी धरेगा.
So you need to have that kind of conviction in the Dhamma, starting with karma.
तो इस प्रकार की कटिबद्धता हमारी कर्मों में धम्म में होनी चाहिए जो कर्मों से जिसकी शुरुआत होती है.
So when you're feeling that faith in the Buddha, just reflect on what the Buddha taught.
तो जब आप कर्मों पे आप चिंतन करते हैं तो इस बात पर जोर दीजिए कि क्या बुद्ध ने सिखाया है.
थिंक ऑफ कर्म,
कर्मों को सोचिए.
थिंक ऑफ द पाथ,
मार्ग को सोचिए.
थिंक ऑफ शील समाधि प्रज्ञा,
शील समाधि प्रज्ञा को सोचिए.
सो व्हेन यू गो फॉर रेफ्यूज टू द बुद्धा, व्हेन यू गो टू द फीट ऑफ द बुद्धा, यू आर आल्सो गोइंग टू द फीट ऑफ द धम्मा.
तो जब आप बुद्ध के चरणों में जाते हैं तब आप धम्म के भी चरणों में जाते हैं.
So this is the first aspect.
तो यह पहला आयाम है.
And a really important aspect for us to keep in mind, especially in India.
और यह बहुत महत्वपूर्ण आयाम है विशेषतः भारत में.
And of course you can't be convinced in the truth of the Dhamma unless you know the Dhamma.
और निश्चित ही आप धम्म के सत्य के साथ सहमत तब तक नहीं हो सकते जब तक आप उसे जानते नहीं.
You can't just say whatever's in that book, I believe in it.
आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो कुछ भी उस किताब में लिखा गया है मैं इस पर विश्वास रखता हूँ.
You need to really know it and understand it.
आपको वाकई में उसे जानना होगा, समझना होगा.
So the second kind of faith is, if you like, more emotional or even aesthetic.
तो दूसरे प्रकार की जो श्रद्धा है यह भावनिक है, सौंदर्य कारक है.
It's called the serene or a lucid faith.
आप इसे सुस्पष्ट या शुद्ध श्रद्धा कह सकते हैं.
And its attraction to the qualities of the Buddha, Dhamma and Sangha.
और यह जो बुद्ध धम्म संघ के जो गुण है, जो सुंदर गुण है उसके तरफ आकर्षण.
When you think of the Buddha, you think of how great he was.
जब आप बुद्ध को सोचते हैं तो आप सोचते हैं कि कितने वे महान थे.
You think of how selfless he was.
वे कितने निस्वार्थ थे.
You think how hard he worked for humanity.
कितना कठिन परिश्रम उन्होंने मानवता के लिए किया.
How wise he was.
कितने वे प्रज्ञावान थे.
What enormous energy he had.
कितनी यानी महान उनकी ऊर्जा थी, वीर्यता.
So you think of all his qualities.
तो यह सब गुणों के बारे में हम सोचते हैं.
And that is the serene faith when you think of those qualities and you respond to them.
तो यह शुद्ध श्रद्धा होती है जब इन गुणों के तरफ आप प्रति आप जब प्रतिसाद देते हैं.
You just find yourself loving them.
आप अपने आप को ऐसा पाते हैं कि मानो आप उसके प्यार में हैं.
That's probably the best word for it. You love those qualities.
तो यही इसके लिए अच्छा शब्द हो सकता है. इन गुणों के प्यार में आप होते हैं.
And you delight in them.
और इसमें आप आनंद लेते हैं.
Thinking of them makes you so happy.
उसके बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको खुशी या आनंद मिलता है.
And you feel a tremendous calmness.
और एक यानी गहरी शांति का अनुभव आपको आता है.
All your problems just disappear.
आपके सारी जो समस्याएं मानो अदृश्य हो जाती है, चली जाती है.
You're no longer puzzled about what to do.
आप इस संभ्रम में नहीं होते कि अब मैं क्या करूं.
It's very clear to you where to go.
यह काफी स्पष्ट आपको होता है कि कहां मुझे जाना है.
You feel a powerful attraction.
एक प्रबल आकर्षण आपको महसूस होता है.
And a great sense of contentment and ease.
और एक बहुत गहरी सहजता और समाधान, संतुष्टि आप महसूस करते हैं.
When this kind of faith is really deep, nothing can trouble you.
अब ऐसी श्रद्धा जब गहरी होती है तो कोई भी बात आपको त्रासदायक या तकलीफ नहीं देती.
Whatever's happening, you're not disturbed.
कुछ भी हो आप विचलित नहीं होते.
There may be somebody next to you with a very loud, badly tuned loudspeaker.
भले ही आपके बाजू में बहुत बड़ा भोपू लेके कोई बैठा है.
You may hear Allahu Akbar.
या आप अल्लाहू अकबर सुने.
Somebody may tread on your foot.
हो सकता है आपके पैरों पर कोई पैर रख दे.
You may be trying to go round the parikrama and somebody barges in front of you.
आप परिक्रमा करने जाते हैं लेकिन बीच में कोई घुस जाता है.
You don't mind.
तो आप इससे आपको फर्क नहीं पड़ता.
Because your heart is with the Buddha.
क्योंकि आपका जो दिल है वह बुद्ध के साथ होता है.
Nothing can bother you. Nothing can disturb you.
कोई भी बात आपको विचलित नहीं करती.
You've forgotten yourself.
आप अपने आप को भूल जाते हैं.
You could say that's the characteristic of this kind of faith.
तो आप ऐसा कह सकते हैं यह विशेष विशेष गुण होता है श्रद्धा का.
You just lost yourself.
आप अपने आप को भूल जाते हैं.
You're just lost in the Buddha.
आप बुद्ध में खो जाते हैं.
You see the Buddha as everything.
आप बुद्ध को हर चीज है ऐसा देखते हैं.
Your mind, your heart, everything is with the Buddha.
आपका मन, आपका हृदय बुद्ध के साथ होता है.
You feel so happy, so contented.
आपको काफी खुशी मिलती है, समाधान मिलता है.
A very great equanimity.
ऐसी महान उपेक्षा. ऐसी महान उपेक्षा.
It's as if now the world is the right way up.
अब ऐसा लगता है कि मानो दुनिया बिल्कुल सही है.
Before that, everything had been upside down.
उसके पहले हर चीज उल्टी नजर आती है.
Or all jumbled up.
हर चीज मानो उथल पुथल लगती है.
And now it's all the right way up.
अब हर चीज मानो अपनी जगह सही है.
I used to experience this very strongly going to see Bhante.
यह मुझे प्रबल अनुभव आता है जब मैं भंते को मिलने जाता हूँ.
I'd go with many problems in my mind.
बहुत सारी समस्याएं लेकर मैं भंते के पास जाता हूँ.
I had so many problems that I had a problem working out what my problems were.
मेरे पास इतनी समस्या है कि अब मेरी समस्या यह है कि मेरी कौन सी समस्या है.
And I go to Bhante, sort of hoping to say to Bhante, please, Bhante, sort my problems out.
तो मैं यह सोच के या आशा लेके जाता हूँ कि भंते कृपया अब ये मेरी समस्या है, अब इसे आप सुलझाइए.
But as soon as I open the door, problems had gone.
लेकिन जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ समस्या चली जाती है.
Bhante was the answer.
क्योंकि भंते ही जवाब होता है.
Bhante is deeply immersed in the Dhamma.
भंते गहराई से धम्म में है.
Bhante is at the feet of the Buddha.
भंते बुद्ध के चरणों में होते हैं.
So when I come to see Bhante, I see the Buddha and I see the Dhamma.
तो जब मैं भंते के पास जाता हूँ तो मुझे बुद्ध मिलते हैं, धम्म मिलता है.
And Bhante says to me, "Well, Subhuti, was there something you wanted to talk to me about?"
तो फिर भंते मुझे छुपके से पूछते, Subhuti, आपको कुछ बात करनी थी मेरे साथ?
Yes, there was Bhante, but I can't remember what it was.
तो मैं सोचता हूँ हाँ बंते कोई तो भी बात थी लेकिन अभी मुझे पता नहीं मैं क्या बात करने जा रहा.
That's what happens when you come in contact with those qualities.
तो ऐसे होता है जब ऐसे गुणों के संपर्क में आप आते हैं.
You just calm down.
आप केवल शांत हो जाते हैं.
You feel great joy, great delight.
आपको एक परमानंद मिलता है या बड़ा आनंद मिलता है.
It'll shine in your face.
आपके चेहरे पे यह छलकता है.
As I've seen it shine in your faces.
जैसे मैं आपके चेहरों को अभी देख रहा हूँ.
Some of you it's shining in your faces now as I'm reminding you of it.
जैसे मैं इसकी याद दिला रहा हूँ आपके चेहरे खुल रहे हैं.
That's this serene faith.
तो यह शुद्ध या सुस्पष्ट श्रद्धा है.
It's really like aesthetic response, huh?
ऐसा हम कह सकते हैं कि यह सौंदर्य शास्त्रीय प्रतिसाद है.
Like when you hear a beautiful poem or a beautiful song.
जैसे आप बहुत सुंदर कविता को या गीत को सुनते हैं.
You feel a great delight.
आपको एक आनंद मिलता है.
So it's like that only on another level.
तो ऐसे ही होता है लेकिन उसके अलग स्तर पर.
You're listening to the song of the truth.
सत्य का गीत आप सुनते हैं.
You're hearing the poem of the Dhamma.
आप धम्म की कविता सुनते हैं.
And your heart just goes to it.
और आपका दिल वहाँ बिल्कुल चला जाता है.
So it's a very beautiful aspect of faith.
तो यह बहुत ही सुंदर आयाम है श्रद्धा का.
And one who has this kind of faith just shines with it.
और जिसके पास यह आयाम है वो केवल चमकता
है. I watched a film about the Kalachakra ceremony that was held by the Dalai Lama here in Bodh Gaya some years ago.
कुछ साल पहले कालचक्र यह जो पूजा यहाँ होती है उसके ऊपर एक फिल्म बनाई गई थी जो दलाई लामा यहाँ करते हैं. कुछ साल पहले मैंने वह फिल्म देखी.
It was made by a very good filmmaker.
बहुत अच्छे फिल्म बनाने वाले थे उन्होंने वो बनाई थी.
Werner Herzog, very great German filmmaker.
Werner Herzog ये जर्मन के फिल्म निर्माता है.
Anyway, he's interviewing various people who'd come for the ceremony.
तो उस समारोह के लिए जो लोग आए थे उनकी अलग अलग मुलाकातें इंटरव्यूज वो ले रहे थे.
And he was talking to one Mongolian lama.
एक मंगोलियन लामा वहाँ थे उनके साथ वो बात कर रहे थे.
And he was from Russian Mongolia, so the other side of China.
तो रशिया से जो मंगोल जुड़ा हुआ है वहाँ से थे जो चाइना के दूसरी ओर जुड़ा हुआ है.
I don't know how many thousands of miles that is.
अब कितने हजार मील यह फैला हुआ या दूरी पर है मुझे पता नहीं.
It must be 10,000 miles or something like that.
शायद हजार मील भी नहीं, 10,000 मील भी हो सकता है.
And while the filmmaker was talking to him, I noticed he had a big lump on his forehead.
तो जब उनकी मुलाकात उनकी इंटरव्यू में देख रहा था तो मैंने देखा कि उनके माथे पर इतना बड़ा फूला हुआ उनका माथा इतना बड़ा फूला हुआ था.
He'd walked all the way from Mongolia to Bodh Gaya.
वो मंगोलिया से पैदल चलकर बोध गया तक आए थे.
But not just walked, he'd walked and bowed, walked and bowed, walked and bowed.
तो वे केवल चले नहीं थे तो वे चले थे और नतमस्तक होते थे चले थे.
Prostration.
Yeah, just say what I'm saying.
चले थे और झुकते थे नतमस्तक होते थे.
Just as we see people going round the parikrama, three steps, one prostration.
तो जैसे परिक्रमा के आजू बाजू लोग घूमते हैं चलते हैं और प्रोस्टेशन को क्या कहते
हैं
प्रणिपात कर रहे थे.
And that's why he had a big lump on his forehead.
उस प्रणिपात के कारण उनके माथे पर इतना बड़ा यानी उनका माथा फूला हुआ था.
Just like on the bottom of your foot, he had it on his head.
जैसे आपके पैरों पर भेग गिरती है वैसे उनके माथे पर गिर गई थी.
But while he was being interviewed, I saw his face was shining.
लेकिन जब उनकी मुलाकात मैं देख रहा था तो मैंने देखा कि उनका चेहरा चमक रहा था.
I don't think I've ever seen anybody so happy.
मैंने कभी भी इतना खुश आदमी नहीं देखा.
He was just shining with joy.
वो आनंद के साथ यानी चमक रहे थे.
Faith had made him bow every three steps, 10,000 miles.
तो हर तीन कदम पे एक प्रणिपात 10,000 मीलों की दूरी.
But completely humble.
लेकिन पूरी तरह वे नम्र थे.
Just full of joy.
आनंद से पूरे भरे हुए थे.
That's the kind of faith that we're talking about here.
तो इस प्रकार की श्रद्धा की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ.
I remember Bhante saying that after the Diksha in 1956, people were full of so much faith.
बंते ऐसा बताते हैं 1956 की दीक्षा यानी धम्म दीक्षा जो बाबा साहब ने दी लोग श्रद्धा से भरे हुए थे.
He said that meeting people in Nagpur even at the time of Baba Sahib's passing away, people were so full of faith in the Dhamma.
जब बाबा साहब चले गए तब भी जब बंते लोगों से मिले तो लोगों के दिल श्रद्धा से भरे हुए थे.
And Bhante said that if they'd been properly guided at that time, many of them would have entered the stream of the Dhamma.
Bhante aisa batate, us waqt agar logon ko achha margdarshan mil jata, to kai log shrotapann ho jate.
Because they had that kind of serene faith.
Us prakar ki vah shuddh shraddha logon mein thi.
And people were so joyful.
Aur log kaafi khush the.
You often meet that with the old followers of Baba Sahib, the first generation.
तो पहली जो पीढ़ी है बाबा साहब के अनुयायी की आप उनको मिलिए उनमें यह दिखता है.
They're often very, very simple.
वो बहुत ही सीधे साधे लोग होते हैं.
But they're shining with faith.
लेकिन श्रद्धा से वो चमकते हैं.
So that's the kind of faith that we will feel.
तो इस प्रकार की श्रद्धा हम महसूस करते हैं.
But even that is not enough.
लेकिन यह भी पर्याप्त नहीं है.
Yes, you need clarity. You need to understand the truth.
निश्चित ही आपको स्पष्टता चाहिए. आपको सत्य समझना होता है.
You need to feel the Buddha and Dhamma.
आपको बुद्ध धम्म संघ को महसूस करना होता है.
But you also need to move towards them.
लेकिन आपको उसके ओर भी बढ़ना होता है.
It's no good standing at the bottom of the mountain and just worshipping the top.
इसका कुछ मतलब नहीं है आप शिखर जो है उसको देखते रहे और आप नीचे केवल खड़े रहे.
You need to make the decision to go up.
आपको यह निर्णय लेना होता है कि आप ऊपर जाएंगे.
And this requires a different kind of faith.
और उसके लिए अलग प्रकार की श्रद्धा की आवश्यकता होती है.
What it requires is, in a sense, faith in yourself.
क्या इसमें आवश्यकता है कि आपके खुद के ऊपर स्वयं के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए.
Not in the ordinary sense of faith in yourself.
यानी सर्व सामान्य तरीके की श्रद्धा जो हम अपने आप के ऊपर रखते ऐसी नहीं.
I can pass this exam, I can do this, I can do that. Not like that.
मैं यह परीक्षा पास कर सकता हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ऐसा नहीं.
But it's faith in your capacity to follow the Dhamma until enlightenment.
लेकिन ऐसी श्रद्धा कि आपके आप में यह क्षमता है कि जब तक आप संबोधि को प्राप्त नहीं करेंगे आप धम्म का आचरण करेंगे पालन करेंगे.
It's not just in your capacity but in the capacity of the human mind to achieve enlightenment.
यह केवल आपकी श्रद्धा नहीं होती है उस मन की श्रद्धा या मन के ऊपर श्रद्धा होती है जिसमें यह क्षमता है कि वह संबोधि को प्राप्त कर सकता है.
And a strong determination to carry it out.
और गहरी उसका निर्धार या उसकी कटिबद्धता.
You really need to believe that you can do it.
ऐसा प्रबल निर्धार कि मैं इसे कर ही सकता हूँ.
Because you are a human being.
क्योंकि आप मानव होते हैं, इंसान होते हैं.
You are responsible for your karma.
आप अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार हैं.
You are capable of making your karma more and more skillful.
आप इस बात में सक्षम है कि आपके जो कर्म है ये अधिक से अधिक आप कुशल कर सकते हैं.
You can follow that path all the way to enlightenment.
इस मार्ग के ऊपर जब तक संबोधि आती नहीं है तब तक आप चल सकते हैं.
So there's a very important aspect of faith.
तो यह श्रद्धा का बहुत महत्वपूर्ण आयाम है.
Otherwise, again, it's just a kind of andashraddha.
नहीं तो फिर ये फिर से दूसरे प्रकार की अंधश्रद्धा होगी.
A blind faith.
अंधश्रद्धा.
You're simply believing that you can be carried there.
आप केवल इतना ही विश्वास रखेंगे कि आप अपने आप ही वहां पहुंच जाएंगे.
Or always you're down there and God is up there.
या फिर आप यहाँ नीचे हैं और ईश्वर कहीं ऊपर है.
And you can just worship, that's all.
आप केवल उसकी फिर पूजा कर सकते हैं बस उतना ही.
You need this longing faith.
इस अभिलाषा पूर्ण यह जो श्रद्धा है उसकी आवश्यकता है.
And the strong conviction that you can do it.
और ऐसा प्रबल निर्धार या कटिबद्धता कि आप इसे कर सकते हैं.
It's defined as longing for what is truly possible.
ऐसे इसे परिभाषित किया गया है कि इसकी अभिलाषा करना जो संभव है.
If I say I long to be the Prime Minister of India, it won't happen.
अगर मैं यह अभिलाषा रखता हूँ कि मैं भारत का पंतप्रधान बनूंगा, तो यह मुमकिन नहीं है.
Nobody will vote for me.
मुझे कोई वोट नहीं देगा.
Much of you will, but nobody else will.
आप देंगे?
It's impossible.
तो यह असंभव है.
If I say I'm going to fly, I believe I can fly. It won't happen.
अगर मैं ऐसी कल्पना करूं कि मैं उड़ना चाहता हूं, तो यह संभव नहीं है.
But it is possible for me to gain enlightenment.
लेकिन यह संभव है, मुमकिन है कि मैं संबोधि प्राप्त कर सकता हूं.
I have that capacity.
मुझ में यह क्षमता है.
I know what to do.
मुझे पता है क्या करना है.
The problem is, I have to do it.
समस्या यह है कि मुझे यह करना होता है.
But we need to feel that strong sense of conviction that we can do it.
लेकिन इस प्रकार की प्रबल कटिबद्धता हमें चाहिए कि हम इसे करेंगे.
And a determination to make the effort.
और यह जो निर्धार है, वह निर्धार आपके प्रयासों का है.
Now everybody knows all these three things, of course.
अब हर व्यक्ति इन तीन बातों को जानता है.
I hope that you're all recognizing them in yourself as I'm speaking.
निश्चित ही आप अपने आप में इसे महसूस करते हैं, पहचानते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ.
I hope you're recognizing your conviction in the truth of the Dhamma.
आप अपनी जो कटिबद्धता है धम्म सत्य की, या धम्म के प्रति जो सत्य है उसकी, आप उसे पहचान रहे, जान रहे.
I hope you're recognizing your delight, your joy in the qualities of the Dhamma and the Buddha.
निश्चित रूप से आप इस बात को पहचानते हैं कि कितना आनंद आता है जब हम बुद्ध गुणों को या धम्म के गुणों को हम सोचते हैं.
And I hope that you are recognizing in yourself this strong determination and conviction that you can do it.
और आप यह बात भी अपने आप में पहचानते हैं कि यह गहरा या पक्का निर्धार कि मैं इसे कर सकता हूँ.
And that you will do it.
और मैं इसे करूँगा.
Of course, this is what these white cases mean.
अब निश्चित ही यही यह जो केसा है उसका अर्थ है.
This is why they were put round our necks.
इसलिए हमारे गर्दन पे इसे लगाया गया.
I put that one round his neck, so I know. That's why they were put there.
इसलिए हम केसा पहनते.
Because our preceptors were convinced that we had that kind of faith.
क्योंकि हमारे उपाध्याय इस बात को जानते हैं या सहमत है कि ये कर सकते हैं.
That you shouldn't have been ordained if you don't have it.
अगर आप में अगर यह क्षमता नहीं है तो आपकी दीक्षा नहीं होती.
But we have to strengthen all kinds of faith.
तो इस प्रकार की सभी श्रद्धाओं को हमें मजबूत करना होता है.
And that is one of the great values of us being here at Bodh Gaya.
यह सबसे बड़ा मूल्य या महत्व है बोध गया में होने का.
We're really strengthening our faith in the Buddha, especially.
बुद्ध के ऊपर हमारी जो श्रद्धा है उसे हम प्रबल कर रहे हैं.
In all senses, I hope.
इन सभी आयामों में, इन सभी भावों में.
All three aspects of faith, I hope, are getting strengthened.
यह तीन जो प्रकार या आयाम है श्रद्धा के, यह हम प्रबल या मजबूत कर रहे हैं.
And I'm starting to talk about this now because we're beginning to approach the end.
मैं इस बात को कहने के लिए शुरुआत अब इसलिए किया क्योंकि अभी हम अंत में आ रहे हैं.
So I want us to begin to take advantage of the situation we've been in.
तो मैं जिस परिस्थिति में हम लोग हैं उसका फायदा उठाना चाहता हूँ, उसका लाभ उठाना चाहता हूँ.
We've strengthened our faith.
हमने हमारी श्रद्धा जो है उसे मजबूत करनी चाहिए.
Particularly the second kind of faith, a strong delight in the Dhamma and Buddha.
दूसरे विशेष रूप से जो दूसरे प्रकार की श्रद्धा है जो हम बुद्ध और धम्म गुणों में जो आनंद लेते हैं उसमें.
Of course, the others too.
निश्चित रूप से दूसरे दो भी.
Every night we've been saying what the Buddha attained, I too can attain.
हर रात को या हर शाम को हम यह कहते हैं बुद्ध ने जिसे प्राप्त किया हम भी उसे प्राप्त कर सकते हैं.
But I'd like to ask you to start reflecting a bit more on these three elements of faith in your experience now.
तो मैं आपको यह अनुरोध करना चाहता हूँ कि यह जो तीन आयाम है श्रद्धा के, अभी आपके अनुभव में उसे देखिए.
So that they become more stable in you.
ताकि यह आप में अधिक स्थित हो, स्थिर हो.
Here it's wonderful.
यहाँ होना ही सुंदर.
We're just sitting in the presence of the Buddha.
यहाँ हम बुद्ध के सानिध्य में बैठे
and with our wonderful brothers and sisters in the sangha
और हमारे जो सुंदर भाई बहन हैं उनके बीच हम यहाँ बैठे
listening to the dhamma reflecting on the dhamma
हम धम्म को सुन रहे हैं धम्म के ऊपर चिंतन कर रहे हैं
this is sukhavati
अब यह सुखावती प्रतीत होती है
even with all the Hindi film music and so on
भले इधर उधर गाने चल रहे हैं फिर भी
our mandala is above all that
हमारा जो मंडल है उससे ऊपर है उच्च है
But it's not like that where you're going.
लेकिन ऐसा नहीं है जहां हम जाना चाहते हैं.
So we need to stabilize the experience within ourselves.
इसीलिए इन तीनों बातों को हमारे मन में स्थिर करना आवश्यक है.
That means to make it more conscious.
इसका अर्थ यह है कि हम इसके बारे में अधिक सचेत हो.
To make more conscious of our response of faith.
हम अधिक सचेत हो हमारे श्रद्धा के प्रतिसाद के प्रति
by making it conscious to deepen it
और इसे सचेत करके हम इसे गहरा करें
and then when we go back we'll carry this faith with us
और जब हम वहां जाएंगे तो या हम वापस जाएंगे तो इस श्रद्धा को हम हमारे साथ ले जाएंगे
and that will mean that we practice the dhamma just as vigorously as we have been doing here
और इस धम्म को हम उतना ही जोर लगाकर इसका आचरण करेंगे जैसा हम यहाँ कर रहे हैं
And we'll communicate to others that same faith.
और यही श्रद्धा को हम औरों को संवादित करेंगे
Because this kind of faith is infectious.
Infectious.
Let you catch a disease.
क्योंकि इस प्रकार की जो श्रद्धा है वह संसर्गजन्य होती है या लागवटी होती है
यू कैच इट
क्योंकि आप इसे पकड़ लेते हैं
सो इफ यू आर इन कॉन्टैक्ट विद समबडी हू हैज गॉट फेथ यू कैच इट फ्रॉम देम
क्योंकि अगर आपको कोई श्रद्धावान व्यक्ति के करीब अगर आप जाते हैं तो संसर्गजन्य वो आपको लग जाती है
जस्ट एज आई कॉट इट व्हेन आई गो टू सी बंते
जैसे मैंने उसे पकड़ लिया जैसे जब मैं बंते के पास गया
सो इफ यू स्टेबलाइज दिस फेथ इन योरसेल्फ Well, you'll communicate it to everybody you come in contact with.
अगर इस श्रद्धा को आप अपने आप में स्थिर रखेंगे, तो यही श्रद्धा को आप औरों से संवादित करेंगे.
So, without lessening the faith at all, just begin a little bit of reflection about it.
तो श्रद्धा को थोड़ा भी कमजोर न होते हुए इसके ऊपर हम चिंतन करना शुरू करें
Recognize these three aspects of faith.
श्रद्धा के इन तीन आयामों को हम पहचानें.
The sense of conviction in the truth.
ऐसा भाव सत्य के प्रति या सत्य के प्रति कटिबद्धता का भाव.
The sense of joy in the qualities.
गुणों के प्रति जो हमारा आनंद है वह.
And the deep conviction that you can do it and desire to do so.
और ऐसी गहरी कटिबद्धता के हम में क्षमता है कि हम कर सकते हैं और हम इसे करेंगे.
Just notice that in yourself.
आप अपने आप में इसे देखिए.
And that will strengthen it.
और यही इसे सशक्त करेगी.
While you're at the feet of the Buddha, these three kinds of faith will be very strong.
जब आप बुद्ध के चरणों में हैं, तो यह तीन प्रकार की श्रद्धाएं मजबूत होगी.
So let's remain at the feet of the Buddha, even when we're not at Bodh Gaya.
तो आइए हम बुद्ध के चरणों में हमेशा रहें, भले ही हम बोध गया में ना रहें.
Of course, we've still got 2 days to go, 3 days to go.
अभी भी हमारे पास 3 दिन हैं.
But it's time to start using what we've gained.
तो अब इसका हम इस्तेमाल करें जो कुछ भी हमने हासिल किया.
And it's important that we do this if we really are to know our place.
और हम इसे तभी करने की शुरुआत करेंगे जब हम जानेंगे कि हमारी जगह कहाँ है.
Bhante's poem, at least the verse of his poem that we've been reading, expresses these three kinds of faith very strongly.
तो यह भंते की जो कविता है, कम से कम यह जो कड़वा या गाथा जो है, यह प्रबलता से इसे बताता है.
Of course, there's a great deal of deep understanding in the poem.
निश्चित रूप से वहाँ गहरी समझ की आवश्यकता है, गहरी समझ है उस कविता में.
And a great conviction in that understanding.
और उसकी समझ में गहरी कटिबद्धता है.
And There's great serenity.
और उसमें महान शुद्धता है, स्पष्टता है.
Bhante is clearly deeply, deeply joyful in the Buddha.
क्योंकि भंते काफी गहराई से बुद्ध में आनंद लेते हैं.
And he clearly feels he knows where his position is in the world.
और स्पष्टता से इस बात को वह जानते हैं कि इस दुनिया में उनका स्थान क्या है या कहाँ है.
And he's determined to go there.
और वे इस बात से कटिबद्ध है कि वे वहाँ जाएंगे.
So that's why I think this poem moves us so much.
इसलिए यह कविता जो है हमें काफी प्रेरित करती है.
It's a very full expression of Shraddha in all its three aspects.
तो यह श्रद्धा के तीन आयामों की पूर्ण अभिव्यक्ति है.
Not in Nirvana's stillness, not in Samsara's flow, not in the heavens above us, not in the hells below, not in thought or word or action, not where mind and object meet, with wisdom and compassion, my place is at thy feet.
ना निर्वाण की स्थिरता में, ना संसार के प्रवाह में, ना ऊपर स्वर्ग में, ना ही नरक तल में, ना विचार शब्द एवं कृति में, ना मन और वस्तु स्पर्श में, पर प्रज्ञा और करुणा के साथ मेरी जगह आपके चरणों में.